ഹരി കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ചാപ്റ്റർ 18 ടെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 9. ഇസ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന കോ ഗ്രഹണ കർണേ കേ ലിയേ കൃപ പ്രാപ്തി കർണേ കേ ലിയേ മംഗളാചരണ കരെങ്കേ താക്കി ഹം ജോ അധ്യയൻ കർണേ വാലേ ഹേ ഉസ്കാ പൂരാ പൂരാ ലാഭ പ്രാപ്ത ഹോ സകേ ജോ കി ഹേ കൃഷ്ണ പ്രേം കി പ്രാപ്തി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരന്തസ്യ ജ്ഞാനഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഃ കദാമഹയം ദദാതി സ്വ പദാന്തികം. വന്ദേ അഹം ശ്രീഗുരുഃ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുന്വൈഷ്ണവാശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥൻ വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദ സഹഗണലലിത ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപീഷ ഗോപീക കാന്ത ശ്രീരാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചനം ഗൗരംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനോ സൂതദേവി പ്രണമാമി ഹരി പ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപ്പതരുഭ്യഃ കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതം ഗദാധാരം ശിവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത മാത കീ ജയ ഹോ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ സെ അർജുൻ നെ ത്യാഗ ഓർ സന്യാസ കെ വിഷയ മേ പൂച്ഛാ തോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ നെ ബതാന ശുരു കിയാ ഹേ ഓർ പെഹ്ലെ കഹാ. अरे भगवान श्री कृष्ण ने 7 नंबर में बताया, नियतस्य तु संन्यास कर्मण नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः. कि जो अपने नियत कर्मों को त्याग देता है, क्या क्यों त्यागता है, मोह के वश त्याग देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है. यानी कि मोह होता है उसको, या फिर प्रपंच समझकर, या फिर ना ये सोचकर त्याग देता है कि कौन इस झंझट में पड़े, तो वो तामसी त्याग है. और आगे बताया भगवान ने, दुखम इत्येत कर्म काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्यागम फलम भवे. और अपने नियत कर्मों को जो दुख दुख देने वाला समझकर, या शारीरिक क्लेश के भय से अगर कोई त्याग देता है, तो वो रजोगुणी त्याग होता है. अब यहाँ पर आप लोगों ने एक बात नोट की कि भगवान श्री कृष्ण ने त्याग के विषय में बताना शुरू किया सबसे पहले तामसी बताया, उसके बाद राजसी और आज भगवान श्री कृष्ण हमें सात्विकी त्याग के विषय में बताए। ये वैसे इससे पहले जब भी भगवान ने ये तीन गुणों के विषय में बताया तो जो भी भगवान ने बताया यज्ञ दान तपस्या इत्यादि, तो हमेशा भगवान ने सबसे पहले सत्वगुणी बताया, उसके बाद रजोगुणी, आखिर में तमोगुणी बताया। लेकिन इस बार भगवान श्री कृष्ण ने उल्टा शुरू किया ना, पहले तामसी बताया कि भाई मोहवश अगर त्याग दोगे तो तामसी होगा, और अगर शारीरिक क्लेश के भय से अगर त्याग दोगे तो राजसी होगा, और आज भगवान हमें सात्विकी बताया। ये उल्टा भगवान से शुरू किया, भगवान ने उल्टा इसलिए शुरू किया कि सबसे पहले तो अर्जुन को ये बता दो कि मोहवश नहीं त्यागना है, ये तो तामसी है। तामसी तो वो ज्यादा खतरनाक होता है, वो तो आपको भयंकर स्थिति में पहुंचा सकता है, क्योंकि तमोगुणी त्याग जो है, तमोगुणी कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसका बहुत भयंकर परिणाम होता है। तो तमोगुण में तो एटलीस्ट नहीं करो, फिर वापस बताया रजोगुण में भी नहीं करना कि अपने शरीर में कष्ट हो, ये सोचकर। आज भगवान हमें सात्विकी त्याग के विषय में बताएंगे। भगवान कह रहे हैं चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 9, भगवान ने कहा कार्यमित येव यत् कर्म नियतम क्रियते जुना संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, मेरे साथ श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः परिकीर्तितः। एक बार फिर, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। एक बार फिर, कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागम सत्यागः सात्विको मतः। वन लास्ट, ठीक है, जरूर पढ़िए साथ में। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। इस श्लोक को हमें याद करना चाहिए, ये बहुत ही सुंदर भगवान के वाक्य हैं। सात्विकी त्याग के विषय में भगवान बता रहे हैं। भगवान ने कहा कार्य, कार्यम मतलब करणीय, जो आपके नियत कर्म है ना, जैसे आप जिस भी स्टेज पर हो, आपके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत है, निर्धारित है। तो इत कार्य मतलब करणीय, इति मतलब इस प्रकार, एव यानी निस्संदेह, यानी कि जो आपके करणीय कर्म है, जो आपको करने हैं वो निस्सन, यत्तु आगे बताया, यत् कर्म नियत, यानी कि जो, यत यानी जो कर्म मतलब कार्य, नियतम यानी निर्दिष्ट है, क्रियते किया जाता है अर्जुन, यानी कि भगवान कहते हैं कि वो मनुष्य जो अपने कर्तव्य ये सोचकर करता है कि मुझे करना है, बस ये तो मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, वो करता है, मतलब अपने कार्य सारे करता है, लेकिन मतलब फिर त्याग क्या करता है? जब कार्य सारे करता है, भगवान त्याग के विषय में बता रहे हैं, तो आगे भगवान बताते हैं, देखो त्याग क्या है, संगम त्यक्त्वा फलम चैव, यानी भगवान कहते हैं संगम, संगति, संग, और आगे भगवान ने कहा त्यक्त्वा, यानी कि आसक्ति, उसके अंदर अटैचमेंट को त्यागना, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, किसके अंदर अटैचमेंट को त्यागना है, फलम चैव, यानी कि फल की आसक्ति को त्यागना है, फल के संगति को त्यागना है, और भगवान आगे बोलते हैं एव सत्याग, यानी कि वो निश्चय ही सही वाला त्याग है, कौन सा वाला त्याग है, सात्विको मतः, सात्विको मतलब सत्वगुणी, मतः मतलब मेरे मत से। भगवान ने बहुत ही सुंदर त्याग का वर्णन किया है, बिल्कुल इतना अच्छा भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है, करना है, और यानी कि कर्म को नहीं त्यागता, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, दो चीजों को त्यागने का कहा, संगम त्यक्त्वा फलम च एव, यानी संग को भी त्यागता है, संग माना आसक्ति को, कार्य के अंदर आपकी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति ही आपको आपके कार्य में काम उत्पन्न कराएगी, इच्छा उत्पन्न कराएगी, फिर काम पूरा नहीं होगा तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध आपका पूरा नहीं होगा फिर लोभ उत्पन्न होगा, और इस तरह से दोबारा हम मादी गंदगी में गिर जाएंगे। ये संगति जो है, इसी भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि संसार से मुक्ति प्राप्त करने का एक तरीका जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें 15.3 में बताया था, बहुत ही सुंदर, और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। भगवान ने कहा न रूप मत्सेह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढमूलम असंगशस्त्रेण दृढ़े न छित्वा, कि ये जो वृक्ष है जिसकी जड़ें बहुत ही दृढ़ है, बहुत ज्यादा खतरनाक वृक्ष है जो आपको भटकाता रहता है, उसको काटने के लिए शस्त्र कौन सा बताया, असंग शस्त्र है ना, और आज भगवान श्री कृष्ण उसी संग त्यक्त्वा, संग त्यक्त्वा मतलब अनासक्ति, और असंग, असंग का मतलब होता है अनासक्ति, ये दो चीजें हैं। जब आप उनके साथ कोई कार्य करते हो, कार्य को त्याग करने के लिए भगवान ने नहीं कहा, खाली कहा संगम त्यक्त्वा फलम च एव, यानी संग को त्यागना, आसक्ति को त्यागना, डिटैचमेंट का हथियार होना चाहिए, और उस कार्य के फल में आपकी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो वह उसका सात्विक त्याग कहलाता है। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने बताया, और इसी त्याग के विषय में श्री रूप गोस्वामी ने बताया था अनासक्तस्य विषयान, यानी विषय के अंदर जो विषय है उसके अंदर आपकी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यथार्हम उपयुन्युत, यानी कि वो हमें करने हैं उसके अंदर आसक्ति नहीं है, लेकिन वो हमें करने हैं, और क्या सोचकर करने हैं, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते, ये मुझे इससे कोई आसक्ति नहीं है, मुझे इसके फल की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कृष्ण ने मेरे लिए यह निर्धारित किया है, मेरी जो स्टेज है उसके हिसाब से भगवान ने मुझे यह ड्यूटी सौंपी है, तो यह ड्यूटी मुझे करनी है, उसके अंदर मुझे कोई आसक्ति नहीं करनी है, और युक्त वैराग्य मुच्यते, और इसको युक्त वैराग्य कहा, असली त्याग उसको कहा, और भगवान ने इसको सात्विकी त्याग कहा। श्री प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए, मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुण से विलग हो जाना चाहिए, यानी कि कर्म के अंदर उसकी कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उससे बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, ना ही कारखाने के श्रमिकों से, यानी कि अब आप कोई भी कार्य कर रहे हो, जैसे हम घर में कार्य करते ना, तो इसकी बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि देखो हमारे घर में ना नौकर भी आते, कोई सर्वेंट आते ना घर में काम करने के लिए, वो घर को कितना अच्छे तरीके से साफ करते हैं, हर चीज एकदम सही करके रखते हैं, जो भी चीजें फैली हुई होती है जहां पर सेट करनी होती है बेडशीट सेट करते हैं, डस्टिंग करते हैं, लेकिन है ना उनका मन क्या होता है, पूरा मन अपने घर में होता है कि मुझे अपने घर जाना है, मेरे बच्चे है ना उनको भी खाना देना है, लेकिन वहां पर वो कार्य इतना अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, उनको किसी चीज से आसक्ति नहीं होती है, किसी सारी चीजें सेट करके रखते हैं फिर भी मिरर साफ करते, शीशे साफ करते, दीवारें साफ करते, किचन साफ करते, हालांकि उनको हमारे घर से कोई भी आसक्ति नहीं होती है, लेकिन वो क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि उसको मालिक जो है जो मालिक होते हैं उनको प्रसन्न करना होता है, है ना, मालिक को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उसकी कोई अटैचमेंट नहीं होती है। अभी बाद में वो घर पे चला जाए फिर भले कोई चोरी करके जाए, उसको तो फर्क नहीं पड़ता ना, और उसकी आसक्ति किसमें है, अपने बच्चों में, ठीक है। उसी तरह हम आत्मा है, यह शरीर हमें मिला है, यह शरीर नौकर की तरह है, तो हम इसको जैसे जितने भी कार्य हमें हमें सौंपे गए हैं वो मालिक को प्रसन्न करने के लिए, कौन मालिक, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारे ये ड्यूटीज मुझे करनी है, लेकिन अटैचमेंट किसके साथ होना चाहिए, जो मेरा रियल संबंधी है जो भगवान है उसके साथ हमारा अटैचमेंट होना चाहिए। तो इससे करने से यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी यही बता रहे कि कारखाने का जो मजदूर होता, जो वर्कर होता है, उसकी अगर अटैचमेंट नहीं होती है, उस कृष्ण भावना में रहकर अगर वो कार्य करता है तो कारखाने के मुलाजिमों में या कारखाने में उसकी कोई भी आसक्ति नहीं होती, वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, क्योंकि उसकी उसको पता है कि मेरा रियल मकसद, मेरा सच्चा प्रेमी कृष्ण है, मुझे उसको खुश करना है, तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है, और जब कृष्ण को अर्पण किया जाता है उस सारे कार्य का फल कि भाई मैंने अच्छा, और अच्छा करना है, ऐसा नहीं कि ये जान छुड़ाने के लिए जंजर समट की जैसा जैसा करना है, अच्छा करना है ताकि कृष्ण प्रसन्न हो कि भाई ये ड्यूटी अच्छी कर रहा है, तो फिर है ना हमको अच्छी ड्यूटी और भी उससे ज्यादा अच्छा, जैसे प्रमोशन होता है ना, फिर अभी हम माया की सेवा कर रहे हैं फिर भगवान हमें प्रमोशन देंगे और प्रमोशन के बाद हमें डायरेक्ट से भगवान की सेवा मिलेगी तो कितना अच्छा है, लेकिन अगर हम लोग यही काम अच्छा नहीं करेंगे ना, जो भगवान ने हमें निर्दिष्ट कर्म दिए हैं वो अच्छे से नहीं करेंगे तो भगवान ने बोला ये तो ये साधारण सा कार्य नहीं कर सकता, मेरी सेवा क्या खाक करेगा, फिर भगवान अपनी सेवा भी नहीं देंगे। इसे जो भगवान ने हमें कार्य निर्दिष्ट दिए हैं वो हमें अच्छे से करने हैं। आगे वाला श्लोक जो है वो बहुत ही सुंदर है, मेरा प्रिय श्लोक है, बहुत ही अच्छा लगता है बोलने में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 10, भगवान कहते हैं न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुशच्यते त्यागी सत्व समावेष्टो मेधावी छिन्न संशयः। साथ में पढ़िए, न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुशच्यते त्यागी सत्व समावेष्टो मेधावी छिन्न संशयः। एक बार फिर, न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुशच्यते त्यागी सत्व समावेष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुशच्यते त्यागी सत्व समावेष्टो मेधावी छिन्न संशयः। एक बार लास्ट, न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुशच्यते त्यागी सत्व समावेष्टो मेधावी छिन्न संशयः। वो सुंदर श्लोक है। असल में भगवान श्री कृष्ण ने जो अभी सात्विक की त्याग बताया ना, उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं न द्वेष्टि या कुशलम कर्म। न द्वेष्टि मतलब न मतलब कभी नहीं, द्वेष्टि मतलब घृणा करता है, अकुशलम। अकुशलम का मतलब होता है अगर उसके सामने कोई अकुशल कर्म आता है, अशुभ कर्म आता है। अशुभ का क्या मतलब होता है, यानी कि एक ऐसा कर्म जो देखने में समाज की दृष्टि में अशुभ लगता है, लेकिन आपका फर्ज है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे समाज की दृष्टि में अशुभ लगता है, कैसे मतलब, जैसे अब अर्जुन क्षत्रिय था, उसके सामने अब निर्दिष्ट कर्म क्या था कि उसको युद्ध करना था, किसके किसके साथ, भीष्म पितामह और गुरु, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने दादा के साथ और भीष्म पितामह के साथ, भीष्म पितामह और अपने गुरु महाराज के साथ युद्ध करना था। समाज की दृष्टि से देखा जाए तो यह कितना अकुशल कर्म है, मतलब बिल्कुल घृणित कर्म है। और इस तरह ये क्वेश्चन किया था अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में। अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, और अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि आप मुझे बोल रहे हो कि इनके साथ युद्ध करूं, अगर आपके सामने, ऐसे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने पहले या दूसरे अध्याय के किसी तात्पर्य में बताया था कि आप मुझे बोल रहे हो कि इनका वध करो, अगर आपके सामने आपके नाना उग्रसेन होते या आपके गुरु सांदीपनि होते तो उनको मारते। तो उसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। देखो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अकुशल कार्य से कोई द्वेष नहीं करता। अकुशल यानी कि समाज की दृष्टि से अगर आपका कर्तव्य अशुभ है तो भी न द्वेष्ट, वो घृणा नहीं करता। कुशले नानुषज्जते, कुशले मतलब अगर शुभ है, समाज की दृष्टि से बहुत अच्छा है तो नानुषज्जते यानी उसके अंदर आसक्ति भी नहीं रखता। त्यागी सत्व समाविष्ट, सत्व मतलब जो त्यागी सत्वगुण में स्थित होता है, मेधावी वही बुद्धिमान है, छिन्न संशय उसको, उसके सारे संशय, समस्त संशय, सारे संदेह जो हैं वो छिन्न हो गए, यानी कि वो खत्म हो गए, उसको अपने कर्तव्यों के विषय में कोई संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है और ना ही शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सत्वगुणी व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। उसको ये खबर होती है कि मेरे कर्मों के अनुसार सारे लोग मुझे मिले हैं, अगर मेरे साथ द्वेष भी कर रहे हैं तो भी मेरी ही कोई गलती है, मेरे ही कोई दुष्कर्म है, तो उन लोगों से उसे कोई घृणा नहीं होती है और ना ही अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से, जो क्योंकि उसको पता होता है मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा लिंक जो है, जैसे मैंने अभी आपको नौकर की मिसाल दी, तो उस घर में जितने भी लोग हैं, भले वो उसको लाइक करते हैं नहीं लाइक करते हैं, भले उस घर में कोई कार्य करने से उसको, जैसे वॉशरूम धोते हैं, वो कार्य करते हैं उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं है, वो कर रहा है। और उसी तरह से जो भक्त होता है वो भी अपना कार्य कर रहा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे अच्छा लाइक नहीं करते हैं या फिर कोई कार्य ऐसा है जो मुझे शरीर को कष्ट दे रहा है। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है, वो अपना कर्तव्य करता है। कभी कभी ऐसा होता है घर में कोई है ना पशु मर जाता है तो उसको भी उठा के लेकर आ जाता, उसको पता है कि बस ये जो सा भी कर्म है वो मुझे करना है क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और इसी से मुझे अपने मालिक को प्रसन्न करना। ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण, देखो बुद्धिमान किसको कह रहे हैं, अभी बुद्धिमान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त है, जिसे पता है कि मैं इस संसार में बस आया हूँ अपने कार्य करने के लिए, वास्तव में मैं आत्मा हूँ और आत्मा का मेन कर्तव्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, तो जो मुझे निर्दिष्ट कर्म मिले हैं वो करके मैं भगवान को प्रसन्न कर लूं और फिर ताकि मुझे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़े, किसी चीज में आसक्ति नहीं है, सर्वाधिक बुद्धिमान है और अपने कर्मों में संशय रहित बना रहता है, उसको कोई इस अपने कर्मों में कोई संशय नहीं होता है, शक नहीं होता है कि मैं करूं पता नहीं नहीं करूं, उसको पता होता है ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ये स्टेज है तो मुझे ये करना चाहिए। इसकी बहुत ही सुंदर एक मिसाल बलि महाराज की आती है। बलि महाराज की जब वो यज्ञ कर रहे थे तो उसके एक ओर भगवान है और दूसरी ओर कुशलता है। कुशलता मतलब जब भगवान उनके सामने आए थे और उन्होंने 3 पैर पृथ्वी का दान मांगा था तो शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे उन्होंने समझाया कि ये भगवान है और ये आपकी समस्त कुशलता को छीन लेंगे, यानी कि जितना भी आपके पास धन है, जितना भी वैभव है, जितना ही सुख है, वो सब छीन लेंगे। बलि महाराज ने इस बात को पकड़ लिया और कहा कि अगर ये भगवान है तो मैं अपना सर भी काट करके दूंगा और ये मुझसे मांगने आए हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि भगवान स्वयं मुझसे मांगने आए हैं, यानी कि ये अकुशल कर्म था, उसको पता था कि इसके रिजल्ट में मेरे पास कुछ नहीं बचने वाला, लेकिन उसको इतनी श्रद्धा थी इस बात पर कि अगर भगवान मुझसे लेने आए हैं तो मेरा कर्तव्य है कि जो भी मुझे मेरे पास है मैं उनको दूं, तो कोई भी मतलब उसको कोई संशय नहीं रहा था। भगवान को प्रसन्न करके क्या हमारा कोई ऐसा हो सकता है, अहित हो सकता है, उसको यकीन था। उसने कहा, शुक्राचार्य ने कहा, सुविधा क्या जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकेगा, वो सब ले लेगा, दो पैर में ही ले लेगा, यानी कि उसको उसको तुमने 3 पैर देने के लिए वचन दिया है ना, तो दो एक पैर में तो क्या ले लेगा, पूरी पृथ्वी और अंतरिक्ष नाप लेगा और दूसरे पैर में स्वर्ग नाप लेगा, तीसरा पैर रखने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह ही नहीं होगी, यानी कि वैसे ही तुम उसको नहीं दे सकोगे, जो उसको चाहिए ना वो तुम उसको नहीं दे सकोगे। बलि महाराज मना कर दो उसको, उसके गुरु ने उसको शुक्राचार्य ने बहुत समझाया। बलि महाराज इस चीज से द्वेष नहीं कर रहे थे कि इससे मतलब ये अकुशल कर्म है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरा कर्तव्य है, मैं राजा और भगवान भिक्षुक बन के आए तो भले कुछ भी हो मुझे उनको, उन्होंने त्यागा नहीं अपने कर्म को। और फिर ऐसा हुआ कि जब उन्होंने बलि महाराज ने पूरी सब कुछ अपनी सारे तीनों लोकों का राज भगवान ने उनसे 3 पग में छीन लिया, ये कथा आप सब जानते हो, फिर जब सब कुछ दे दिया तो कुछ मांगा भगवान से, कहा कि भगवान सब कुछ जो मेरा था वो तो आपने छीन लिया, अब मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। बोला पाताल में चले जाओ। बोला पाताल में मैं क्या खाऊंगा, कैसे जीऊंगा, मैं करूंगा क्या वहां पर जाकर। अब सारा 3 लोगों का राज तो भगवान ने दे दिया, भगवान को दे दिया, लेकिन अब इतना सब देने के बाद अगर वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि जीवन निर्वाह के लिए क्या, तो ये खराब नहीं है, ये गलत नहीं है, इसने इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं की है, इसने सिर्फ ये कहा है कि मैं अब क्योंकि जीना जरूरी है, जैसे हम कहते ना कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत जाता, काम यानी इच्छा इतनी नहीं करनी है कि मैं कैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति करूं, इच्छा इतनी करनी है कि मैं जीऊंगा कैसे। तो वो यही जीवन निर्वाह के लिए पूछ रहे हैं कि मैं कैसे, ऐसे नहीं है कि भगवान से हर एक चीज के लिए भिखारी बनकर मांगना चाहिए, लेकिन जीवन निर्वाह कैसे होगा, मैं जीऊंगा तो तुम्हारी भक्ति करूंगा ना। तो भगवान ने पता है उसको क्या कहा, भगवान ने उसको इतना दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। भगवान ने कहा तुम पाताल में रहोगे, लेकिन हे दैत्य, ये दैत्य राज थे, और श्रद्धा यानी कि जो ऐसा श्राद्ध जो शुद्ध ब्राह्मण के बगैर किया जाएगा, श्रद्धा और शुद्ध ब्राह्मण के बगैर किया जाएगा, उसका सारा फल जो कर रहा है उसको नहीं मिलेगा, वो सारा फल तुमको मिलेगा। वेदों का अध्ययन यानी कि जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं हम सब, ब्रह्मचर्य पालन के बिना किया जाएगा, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं। आपको पता है गृहस्थ भी ब्रह्मचारी होता है, नहीं पता, ऐसे शास्त्र में आता है, मैंने एक कथा सुनी थी, राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि वह गृहस्थ जो अब शास्त्रों के अनुसार अपने गृहस्थ को चलाता है, संतान उत्पत्ति के लिए ही गृहस्थ जीविका चला रहा है और केवल अपनी पत्नी से संतुष्ट रहता है, वो गृहस्थ ब्रह्मचारी है। तो इसे यहाँ पर बताया गया कि वेदों का अध्ययन अगर ब्रह्मचर्य के पालन के बगैर किया जाता है तो उसका सारा फल किसको जाएगा, महाराजा बलि को जाएगा, हमें नहीं मिलेगा। आगे बताया, भगवान रुके नहीं, बोले बिना दक्षिणा के यज्ञ अगर कोई करता है, दक्षिणा नहीं देता है तो उसका सारा फल यज्ञ करने वाले को नहीं मिलेगा, महाराजा बलि तुम्हें मिलेगा। बिना श्रद्धा के दान अगर कोई करता है, दान के अंदर कोई श्रद्धा नहीं है, तो फिर उसका फल आपको मिलेगा। आगे भगवान ने बहुत ही सुंदर शब्द कहे हैं, इससे तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा, जो मुझसे तथा मेरे भक्तों से द्वेष करता है तो वो कोई भी पुण्य कर्म करता है, कोई भी पुण्य कर्म अगर करता है तो उसके सारे फल आपको मिलेंगे। इवन अगर महामंत्र का जप भी करता है लेकिन मेरे भक्तों से द्वेष करता है, उनकी निंदा करता है या मुझसे द्वेष करता है, तो उसका सारा का सारा फल आपको नहीं मिलने वाला, वो महाराज बलि को मिलेगा। समस्त सत्कर्म श्रद्धा के बगैर किए गए समस्त कर्मों का फल महाराज बलि को भगवान ने कहा, ये सारे के सारे फल तुम्हें मिलेंगे। और भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण किया भागवत महापुराण में। भगवान ने महाराज बलि को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुण्यम वंदे विषयाम यच्छाम, पुण्यम वन द्वेषयाम यच्छाम, मद्वत्ता द्वेषयाम तथा अश्रद्धया यच्छयाम दानम यदताम यजताम तथा तत्सर्वम तव देवेन्द्र तत्सर्वम तव दैत्येन्द्र मत्प्रसादान भविष्यति, तत्सर्वम तव दैत्येन्द्र मत्प्रसादान भविष्यति। हे दैत्येन्द्र, मेरी कृपा से आज के बाद जो भी ये अभी सारे पुण्य बताए कि जो श्रद्धा के बगैर दान करेगा और जो मेरे भक्तों से द्वेष रखकर कोई भी सत्कर्म करेगा, यज्ञ करेगा, दान करेगा इत्यादि, वो सब मेरी कृपा से आज तुम्हें प्राप्त होने वाले। तो देखो, उसने अपने कर्म के अंदर अकुशल कर्म से घृणा नहीं की, अपना कर्म समझकर, अपना कर्तव्य समझकर उसको किया, तो भगवान ने उसको कितना सब कुछ दे दिया, कितना सब वो सोच भी नहीं सकता था। और इसी तरह से हमें भी अपने नियत कर्म को जरूरी करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका रिजल्ट खराब निकलेगा, हमारा जो कर्तव्य है वो हमें अवश्य करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।